نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اتحاد پر ہم ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیکھیں گے. اگر آپ میں سے کسی نے بھی شعور کے ساتھ کبھی خانہ کعبہ کی تصویر دیکھی ہو کہ جس کے چاروں طرف مسلمانوں کے دائرے لگے ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے بڑے اتحاد کی یہ تصویر ہے. وسیع مسجد کے درمیان کعبہ کی عمارت اور چاروں طرف لاکھوں انسان گول دائرے میں اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے عبادت کرتے ہیں. حج کے موقع پہ یہ سالانہ اجتماع ہے جہاں تقریباً دنیا کے 25-30 لاکھ مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہو کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے ایک اللہ کی محبت میں، یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم اسی محبت کے ساتھ دنیا میں جئیں گے اور ہم اسی اتحاد کا مظاہرہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی کریں گے. اگر آپ تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو یہی واقعہ اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہر روز 5 بار ہوتا ہے. کب؟ جب ساری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس طرح گویا کہ وہ ہر روز 5 بار زمین پر مسلمانوں کا گول دائرہ بناتے ہیں، درمیان میں کعبہ ہوتا ہے اور ساری دنیا میں اس کے گرد دائرے بنائے ہوئے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں. یہ کیسی عظیم اور مکمل اجتماعیت ہے جس کی مثال کسی بھی دوسرے مذہبی یا غیر مذہبی گروہ کے ہاں نہیں ملتی. لیکن افسوس کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ اس کے باوجود ہی مسلمان وہ گروہ بن گئے جو آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ غیر متحد ہیں. نہ کوئی دین کا مقصد ان کو متحد کرنے میں کامیاب ثابت ہو رہا ہے اور نہ کوئی دنیا کا مقصد. نہ دنیاوی مقصد ہیں اور نہ اخروی مقاصد ہیں. اتحاد کے اتنے شاندار امکانات کے باوجود اختلاف کی ایسی بری مثال انسانی تاریخ میں دوسری نہیں ملے گی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ سوچتے ہوں گے یا ہم شاید سوچتے ہی نہیں ہیں. صرف حج کے ہی موقع کو اگر ہم دیکھ لینا تو ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے. ہمارا ایک اور لیکچر اس پہ موجود ہے کہ جس میں ہم نے 5 پلرز آف اسلام کی روحانیت پہ بات کی تھی. 100 رمضان بک کا پہلا چیپٹر تھا تو اس میں حج پہ بات ہوئی تھی. اسی طرح لبیک اللہم لبیک سیریز میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ جیسے ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ہے نا. مثلا نماز عاجزی سکھاتی ہے، زکوٰۃ شیئرنگ سکھاتی ہے، دوسروں کا درد سکھاتی ہے. اسی طرح حج اور عمرہ اجتماعیت سکھاتا ہے. مختلف قسم کے لوگ دنیا بھر سے جمع ہوتے ہیں اور ایک جگہ ایک ہی کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم عبادات کو بس عبادت کے طور پہ کریں اور اس کے بعد بس پھر ریچول پورا ہو جائے تو خوشی محسوس کریں، اور یا پھر فقہی باتیں کریں، اس سے دم تو نہیں دینا پڑتا، یہ کر لیں تو ہو جائے گا، احرام کیسا ہو، کہاں تک ہو، چپل کیسی ہو. آج ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے دین کے بس ظاہری ڈھانچے کو ہی اپنا لیا، روح چلی گئی. تو لہٰذا ملت کو متحد کرنے کی بہترین صورت خانہ کعبہ کے گرد طواف اور نماز میں اس طرف منہ کرنا ہے. جب بھی اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، شعور میں لائیے گا خانہ کعبہ کو اور اپنے رخ کو دیکھیں. افسوس کی بات ہے کہ قبلے کے تعین میں تو 19-20 کے فرق پہ اختلاف ہونے لگتے ہیں، جھگڑے اٹھنے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شطر کا لفظ بول کے اس کو وسیع کر دیا، لیکن جہاں ظاہری قبلے کے تعین میں اتنی مین مخ، تو عملی قبلوں کے اندر کتنے تضاد ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اجتماعیت کو برقرار رکھیں، आज भी गए गुजरे दौर में भी इतने इख्तलाफात और इतने तफरकों के बावजूद भी हर मस्जिद क़िबला रुख ही मुँह करके नमाज़ पढ़ाई जाती है, हर मस्जिद में क़िबला रुख करके ही नमाज़ पढ़ाई जाती है। कोई ये जुरत नहीं करता कि क़िबला क़िबले से अपोज़िट कर लूँ, दाएँ कर लूँ कि बाएँ कर लूँ, इल्ला माशाल्लाह। तो फिर इसका मतलब ये कि हम सब एक हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा दिल बड़ा करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को असल पे लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बात आसानी से समझ जाएगी। दूसरा टॉपिक है जिसमें आज हम बात करेंगे, इख्तलाफ की कातिल। इख्तलाफ की कातिल, पहले तो मैं आपको इख्तलाफ का मतलब बता दूं। खा लाम फा इसका रूट है, खल्फ कहते हैं पीछे को, और इख्तलाफ और मुखालफत ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इख्तलाफ क्या है? अपोज़िट वे से आना। और मुखालफत क्या है? एक दूसरे के साथ टकरा जाना। कोई भी रोड तसव्वुर में ले आइए जहाँ कुछ गाड़ियाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और दूसरी ही लेन में साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। ये गाड़ियों का मुख्तलिफ रुख पे चलना ये इख्तलाफ है। लेकिन इन दो गाड़ियों का आपस में टकरा जाना किसी गलती की वजह से ये मुखालफत है। इख्तलाफ गवारा होता है, लेकिन जब इख्तलाफ मुखालफत में बदलता है तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। इख्तलाफ रहेगा, हमारी ज़िंदगी में भी इख्तलाफ है, हमारे इस जिस्म में भी इख्तलाफ है। हमारी आंखें देखती हैं लेकिन कान सुनते हैं, है ना इख्तलाफ। इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए तो फिर ये कहना पड़ेगा कि आंखें देखती हैं तो कान भी देखें, हाथ भी देखें, ज़ुबान भी देखें। बताइए गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाए हैं ना, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका फ़हम, उनके हालात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो ज़रा आइए देखते हैं कि फिर इख्तलाफ की कातिल इस टॉपिक में क्या है। थोड़ा सा कोटेशन पढ़ के सुनाऊँगी। दो इंसानों के बीच में इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ बढ़ता रहा, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। पहले के लिए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स दूसरा था, और दूसरे के लिए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स पहला। होता है ना ऐसा? दोनों एक दूसरे को जलील करने और नुकसान पहुंचाने में लग गए। हर एक के बस में कहने और करने की जो ताकत थी वो इसने पूरी तरह दूसरे की काट में लगा दी। दोनों अपने तखरीबी मशगले में मसरूफ़ रहे, ताहम कोई दूसरे को मिटा न सका, यहाँ तक कि खुद इसके मिटने का वक्त आ गया। आखिरकार दोनों के दरमियान जिस चीज़ ने फैसला किया वो मौत थी। मौत ने हर एक को उसी कब्र में पहुँचा दिया जिसमें वो अपने भाई को पहुँचाने का अज़्म किए हुआ था। अपने भाई को पहुंचाने का अज़म किए हुए था। मौत का ये वाक्या हर रोज़ हमारे सामने पेश आता है। हर दिन कोई शख्स जो दूसरे को कब्र के घड़े में पहुंचाना चाहता था ख़ुद कब्र के घड़े में पहुंच जाता है, मगर कोई इससे सबक नहीं लेता। हर इंसान ये समझता है कि मौत का वाक्या इसी इंसान के लिए नहीं है जिसके साथ, हर आदमी ये समझता है कि मौत का वाक़या सिर्फ़ उसी इंसान के लिए है जिसके साथ वो बज़ाहर पेश आया, ख़ुद इसके अपने लिए ये वाक़या कभी पेश नहीं आएगा। यानी हर इंसान ये सोचता है कि दूसरा तो मरेगा लेकिन मैं नहीं मरूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि मौत की याद हर किस्म के इख्तलाफ और दुश्मनी की कातिल है। मौत इंसान की ज़ात को ख़त्म करती है और मौत की याद इंसान की बुराइयों को। इस जुमले को मैं दोहराऊंगी, इसको अपने पास रिमाइंडर्स में लिख लें, जहाँ निगाहें पड़ती हों वहाँ इस जुमले को लिख के लगा लें कि मौत इंसान की ज़ात को, उसके वजूद को ख़त्म करती है और मौत की याद इंसान की बुराइयों को। सच है ना? जिसको दुनिया में मौत याद रहेगी क्या फिर उसकी बुराइयाँ अपनी मौत आप नहीं मर जाएंगी? लेकिन अफसोस कि कोई इंसान मौत को याद नहीं करता। मौत का वाक़या किसी इंसान के लिए इसकी बुराइयों को ख़त्म करने का सबब नहीं बनता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौत को खूब याद करो जो लज्जतों को ढा देने वाली है, اکسرو اکسرو ذخیر حادم اللذات. کسی انسان کے لیے سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کو برباد ہوتا ہوا دیکھے، لیکن اگر انسان موت کو یاد کرنے لگے تو اپنی بربادی کا اندیشہ اس سے دوسرے تمام احساسات کو اس طرح چھین لے گا کہ اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ اس کا کوئی مخالف ہے. اس کی بربادی کا منصوبہ اسے بنانا چاہیے. سچ ہے نا؟ آپ دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو ذرا خیال آ جائے کہ آج کا دن بس میری زندگی کا آخری دن ہے. 3-4 گھنٹے رہ کے ملک الموت نکل چکے ہیں اور کسی لمحے میرے پاس پہنچنے والے ہیں. کہ اس وقت مجھے یاد رہے گا کہ مجھے اپنے پورے خاندان میں کس سے اختلاف ہے، مخالفت ہے، کون کس نے مجھے سلام کیا کہ نہیں کیا، کس نے مجھے اونچا بٹھایا کہ نہیں بٹھایا. یہ تو دنیا بھی اختلافات ہیں نا، کیونکہ عموماً یہ اختلاف یہی ہوتے ہیں، مجھے یہ دیا، مجھے وہ لیا، میری عزت نہیں کی. ہاں، اور کہاں مجھے یاد رہے گا کہ دین میں میرا کس سے اختلاف ہے، کس نے کسی مسئلے پہ میرے سے اختلاف کیا. آپ ذرا سوچیں، میں نے تو اس مسئلے کو کئی بار آزمایا ہے. موت تو دور کی بات ہے، وہ تو آئے گی انشاءاللہ اپنے وقت پہ. میں نے دیکھا کہ جب کوئی شخص سفر پہ جانے والا ہوتا ہے نا، بالکل آخری لاسٹ مومنٹس، اس وقت اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے وہاں کا. پہلے تو کرتا ہی رہتا ہے، میری اپنی عادت ہے، جب کہیں جانا ہوتا ہے آخری لمحے تک وہاں کے کام، کلاس لے رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کرنا وہ کرنا. لیکن جب بالکل آخری 2 گھنٹے رہ جاتے ہیں نا، تو پھر تو اپنا بیگ پکڑ کے اس میں کچھ رکھو، اس وقت پہ کوئی کچھ کہے پوچھے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اب نہیں، فلائٹ کا ٹائم ہے، فلائٹ نکل جائے گی، اب وہاں جا کے بات ہوگی. یعنی اس وقت انسان ایک قسم کا بے حس ہو جاتا ہے. اور میں نے دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب مائیں کینسر کی مریض ہو کے بستر پہ لیٹتی ہیں نا، اور ان کے دن گنے ہوتے ہیں، تو کوئی ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ان کے پاس لاتا ہے نا لاڈ سے، تو کہتی ہیں ان کو پیچھے لے جاؤ. ان کو رونا بھی ان کا اچھا نہیں لگتا، ان کے لاڈ بھی اچھے نہیں لگتے، کیونکہ نظریں تو آگے لگ گئیں. اگر ہم سب اپنی نگاہیں آگے لگا لیں، ہر دن صبح اٹھ کے اپنی موت کو یاد کریں، اور لذتوں کو توڑنے والی جب یاد رہے گی تو اختلاف ختم ہوں گے. آپ کہتے ہیں جو بھی کریں کرنے دو، بھاڑ میں جائیں، پھر میں کیا کروں، میرا تو آگے کا معاملہ ہے، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ میرے ذاتی معاملات کی خبر لے گا، میں اب دوسروں کے جھگڑوں میں کیوں پڑوں. اس طرح پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ساری مخالفتوں سے بچ جائیں گے. پھر آپ کو یہ بھی نہیں رہے گا فکر کہ کوئی جیت رہا کہ کوئی ہار رہا. ایسا انسان جو ہر لمحے موت کی زد میں ہو، وہ کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ انسان تو خود اپنی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو اس کی موت کے کنارے پہنچا رہا ہے. نادانی کی یہ قسم بھی کیسی عجیب ہے. تو اس ٹاپک میں سے ہم اگر اپنے محاسبے کے لیے ایک چھوٹی سی چیک لسٹ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. میں دن میں کتنی بار موت کو یاد کرتی ہوں؟ کیا مجھے اپنے مرنے کا یقین ہے؟ کیا موت کے مسئلے نے مجھے دوسرے مسائل سے بے نیاز کیا ہے کہ نہیں؟ کیا دوسروں کی موت سے میں عبرت لیتی ہوں؟ کیا دوسرے کا جنازہ اٹھتا دیکھ کر تصور میں میں اپنا جنازہ یاد کرتی ہوں؟ کیا دوسرے کو غسل دیتا دیکھ کر میں اپنے غسل آخر کو یاد کرتی ہوں؟ کیا میں ہر لمحے اپنے آپ کو موت کی کے کنارے پہ محسوس کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری آنکھیں کھول دے. اور کوٹ ورڈ رکھ لیں کہ موت کی یاد اختلافات کی قاتل ہے. جہاں ٹاپک لکھایا تھا نا، اسی کے آگے چھوٹا سا سلیش ڈال کے لکھ لیں موت. سارے اختلاف موت کی صورت میں ختم ہوتے ہیں. میرے کانوں میں کسی شخص کے الفاظ گونجتے ہیں، کسی بات پہ سگے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا، پھر جذباتیت میں آ کر خاندان کے گھر گھر میں گیا اور اسی طرح ہمارے سامنے بھی آیا اور کہا کہ میں اب اس کی شکل نہیں دیکھوں گا مرتے دم تک، وہ مر گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا، کوئی مجھے زبردستی لے جائے گا تو واپس آ جاؤں گا. اس طرح کے جذباتی جملے ایک بھائی نے بولے، اللہ ان کو بھی معاف کرے. اور پھر میں نے دیکھا کہ جب بھائی کا انتقال ہوا तो वही जज्बाती बातें बोलने वाला रो रो के भाई से मोहब्बत की बात कर रहा था। तो जितना सोचेंगे उतना ज़हन खुलेगा। अगला टॉपिक है बाहमी इख्तलाफ। सूरत अनफाल की आयत 46 में आता है, व अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रीहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए मुसलमानों, अल्लाह की इताअत करो, इसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी दुश्मनों पे तुम्हारा रोब ख़त्म हो जाएगा। और सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सच है ना, जब मुसलमान आपस में झगड़ते हैं ना, तो फिर दुश्मनों के दिलों से इनका रोब ख़त्म हो जाता है। मुसलमान अगर मिलजुल कर रहें, वो अल्लाह और रसूल की मरकज़ियत के गिर्द मुत्तहिद रहें, तो वो ज़बरदस्त ताकत होते हैं। दीगर कौमों को इन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती। इनके अक्सर काम महज रोब और दबदबे से अंजाम पाते जाते हैं। इसके बरक्स अगर इनमें आपस का इख्तलाफ पैदा हो जाए, तो दूसरों की नज़रों में इनकी हवा उखड़ जाती है। इनके दुश्मन इन पर हाथ डालने के लिए बहादुर हो जाते हैं, जुरतमंद हो जाते हैं। सच है ना, आज आप कितनों को ही कह लें, फुलां ऐसा मुसलमानों के खिलाफ, फुलां मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी सोचा तो करें आखिर क्यों। आप एक घराने में भी देख लें, जहां शोहर बीवी लड़ते रहते हैं ना, तो दूसरे लोग भी ऐसे घराने को फिर मौजवे सुखन बना लेते हैं। तो जब मुसलमान आपस में लड़ें, तो फिर रोब ख़त्म। इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप भी सोचें क्या होगा भला। फौरन अपने ऊपर ले लिया करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब्र है। क्योंकि जब भी बहुत से लोग एक साथ रहेंगे, तो इनके दरमियान तरह तरह की शिकायतें पैदा होंगी, एक को दूसरे से तकलीफ़ पहुँचेगी, कभी किसी की तनकीद पर किसी को गुस्सा आएगा, कभी किसी की तरक्की से किसी के दिल में जलन पैदा होगी, कभी लेन देन में एक दूसरे का मुफाद टकराएगा, कभी एक शख्स की उम्मीदें दूसरे से पूरी ना होंगी और इसके जज्बात को ठेस लगेगी। इस तरह के बहुत से असबाब हैं जो लाजमन पैदा होंगे, इन असबाब की पैदाइश को रोकना मुमकिन नहीं। सच है ना, आप खुद सोचिए ज़रा, जहाँ भी चंद लोग मिल के रहें, वो दीन हो के दुनिया, वो घर हो के ख़ानदान, वो दोस्तों का साथ हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब कुछ होता है ना, शिकायतें भी होंगी, तकलीफ़ भी होगी, तनकीद भी होगी, दूसरे की तरक्की देख के जलन भी आएगी दिल में, लेन देन में कहीं मुफाद पे चोट पड़ेगी, कभी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, जज्बात को ठेस पहुँचेगी। लेकिन मुमकिन ये सब चीज़ें होके रहेंगी, इनको रोक नहीं सकते। हाँ, मुमकिन सिर्फ़ ये है कि इंसान नाखुशगवारियों को सहे, और जब इस किस्म की कोई सूरत पेश आए, तो अल्लाह के लिए उस पर सब्र करे। इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की ज़मीन पर इत्तेहाद वजूद में आता है, न कि इख्तलाफ को ख़त्म करने की ज़मीन पर। ये जुमला मैं बोल लूँगी, दोबारा आप लिखेंगे, इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की ज़मीन पर इत्तेहाद वजूद में आता है, न कि इख्तलाफ को ख़त्म करने की ज़मीन पर। क्यों? इसलिए कि इत्तेहाद इख्तलाफ ख़त्म नहीं हो सकता, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए, शोहर और बीवी जो कई कई साल एक घर में रहते हैं, क्या ख्याल है, हर बात अच्छी होती है क्या? इसके बगैर ये कोई कह सकता है शोहर के मेरी बीवी से मुझे बिल्कुल किसी मामले में भी इख्तलाफ नहीं? और क्या कोई बीवी शोहर के लिए ये कह सकती है? हरगिज़ नहीं। लेकिन कैसे रहते हैं? बर्दाश्त के साथ रहते हैं, अच्छी बातों को सामने रखो, बुरी को छोड़ो, ये तो शुक्र करो है ना कोई। तो बिल्कुल इसी तरह इख्तलाफ को बर्दाश्त करना है। जो लोग इख्तलाफ और शिकायत को बर्दाश्त करके मुत्तहिद रह सकें, वही अपने दरमियान इत्तेहाद कायम करते हैं। दोबारा बोलूँगी, बहुत अहम जुमला है। जो लोग इख्तलाफ और शिकायत को बर्दाश्त करके متحد رہ سکیں، وہی اپنے درمیان اتحاد قائم کرتے ہیں۔ زندگی کی بیشتر کامیابیوں کا راز صبر ہے، اور اسی طرح اتحاد کا بھی، یعنی کامیابیوں اور اتحاد کا راز صبر میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتحاد نام ہے اختلاف کے باوجود متحد رہنے کا۔ اگر یہ برداشت اور یہ وسعت ظرف نہ ہو تو اتحاد کبھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کبھی غور کریں نا تو ایک ایک جملے کے اندر کتنا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو واقعی ہماری زندگی کے اندر وہ سب کچھ آ جائے گا جو ہم پانا چاہتے ہیں، جس کی کوشش میں ہماری زندگیاں لگ رہی ہیں۔ آج ہر طرف مسجدیں بھر رہی ہیں، ہر جگہ بے شمار لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں پر اللہ کی نصرت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اتنے بے شمار لوگ اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا باہمی اختلاف۔ خدا سے جڑنے کے لیے ہر آدمی مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے، مگر انسان سے جڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس جملے کو تو 3 دفعہ لکھیے گا اپنے نوٹس میں، اگر آپ لکھ سکیں۔ میں دہراتی ہوں، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور حقیقت ہے کہ جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نوٹ کی ہوتی ہیں ان کو بار بار دیکھتے ہیں نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ ہماری سوچ بن جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو محروم نہ کیا کریں ایسی چیزوں سے جو واقعی آپ کی سوچ کو خوبصورت کر دیں۔ بہرحال جملہ بولتی ہوں، خدا سے جڑنے کے لیے ہر انسان مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے، مگر انسان سے جڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ انفرادی عبادت ہر ایک کر رہا ہے، مگر اجتماعی عبادت جس کا دوسرا نام اتحاد ہے، اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی اہمیت کو کوئی نہیں جانتا۔ سچ ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ باعزت زندگی ایک ایک مسلمان کو الگ نہیں مل سکتی، وہ جب بھی ملے گی پورے گروہ کو یکجا طور پر ملے گی۔ سچ ہے نا، آپ دیکھیں کہ آج انفرادی طور پہ مسلمانوں میں بہت لوگ باعزت بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ عزت، ترقی، غلبہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ آج ہم کٹے ہوئے ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہم مسجدوں کی طرف تو دوڑتے ہیں لیکن انسانوں سے جڑ کے نہیں رہتے۔ مسلمانوں کے لیے باعزت زندگی کا ملنا ایک اجتماعی واقعہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجتماعی مدد درکار ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اجتماعی مدد وہ ہمیشہ اجتماعی عمل پر نازل کرتا ہے، انفرادی عمل پر اجتماعی مدد کبھی نہیں آتی۔ یہ لکھ لیجئے جملہ، انفرادی یعنی انڈیویجول، جو انسان انڈیویجولی کوئی کام کرتا ہے نا دین کا، اس پر پھر اکیلی مدد آئے گی، اجتماعی نہیں آئے گی۔ انسان نماز میں اللہ سے ملاقات کر کے مسجد سے باہر آتا ہے تاکہ وہ بندوں سے ملاقات کرے۔ لکھیے اس جملے کو، انسان نماز میں اللہ سے ملاقات کر کے مسجد سے باہر آتا ہے تاکہ وہ بندوں سے ملاقات کرے، مگر وہ بندوں کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ سچ ہے، خدا سے جڑنے والا بندوں سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑ کر بھی وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ کروڑوں مسلمان روزانہ اللہ سے جڑ رہے ہیں، مگر وہ آپس میں جڑ کر متحدہ ملت نہیں بنتے۔ حالانکہ اللہ سے جڑنے کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ جائے. اللہ تعالیٰ سے اتحاد اور اللہ کو ماننے والوں سے اختلاف اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے، نہ کہ اللہ کی مدد کو کھینچنے والا. سچ ہے نا، کتنی بڑی حقیقت ہے. جب ایسا ہو کہ لوگ اللہ سے جڑتے ہوئے نظر آئیں، جب ایسا ہو کہ لوگ اللہ سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہوں مگر وہ بندوں کے ساتھ نہ جڑ رہے ہوں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی جڑے ہوئے نہیں. یہ جو جملہ میں دہراؤں گی، جب ایسا ہو کہ لوگ اللہ سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہوں مگر وہ بندوں کے ساتھ نہ جڑ رہے ہوں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی جڑے ہوئے نہیں. وہ ظاہری عبادت کو دہرا رہے ہیں مگر عبادت کی حقیقت سے خالی ہیں. اللہ کے ساتھ جڑنا انسان کے اندر توازو پیدا کرتا ہے. ایسا انسان مسجد سے باہر انسانوں کے ساتھ انانیت اور سرکشی کا مظاہرہ کس طرح کرے گا؟ یعنی ایگو کا پرابلم نہیں رہے گا پھر اس کا. اللہ سے جڑنا انسان کو حساب کے دن کی یاد دلاتا ہے. پھر ایسا انسان بندوں کے درمیان اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کس طرح رہے گا؟ اللہ سے جڑنا انسان کے اندر خداوندی اوصاف پیدا کرتا ہے. پھر وہ دوسروں کے اوپر مہربانی کرنے سے کیوں کر خالی ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، اللہ سے جڑنا انسان کو ایک ایسی ہستی کا پڑوس عطا کرتا ہے جو تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. پھر ایسے انسان سے دوسروں کو برائی کا تجربہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ سے جڑنا انسان کو اس روز کی یاد دلاتا ہے جبکہ ہر آدمی بے لاگ انصاف کے ترازو پر کھڑا کیا جائے گا. پھر وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بے انصافی کر کے یہ خطرہ کیسے مول لے سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی پکڑ کی زد میں آ جائے؟ اللہ سے جڑنا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اللہ سے درخواست کرے کہ وہ اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. پھر جو انسان خود اپنے لیے عفو درگزر کی درخواست کر رہا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ سخت گیری کا رویہ کس طرح اختیار کر سکتا ہے؟ سورج کی دنیا میں رہنے والا کبھی تاریکی نہیں پھیلاتا، پھولوں کے پڑوس میں رہنے والا کبھی بدبو نہیں بکھیرتا. یہی معاملہ بندہ مومن کا ہے. مومن اللہ اور فرشتوں کی صحبت میں اپنے روز و شب گزارتا ہے. پھر جو آدمی اللہ اور فرشتوں کی صحبت میں رہے، اس سے کسی کو ظلم اور بدخواہی کا تجربہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس معاشرے میں ظلم اور بدخواہی نہ ہو، وہاں اختلاف کا کیا گزر؟ ہر ایک کے سوچنے کی یہ باتیں ہیں. اور یہ خوبیاں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے اندر سے ان اوصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو انسان کو بندوں سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا خدا سے جڑنا لازماً بندوں سے جڑنا بن جاتا ہے. اور جب بندے باہم جڑ جائیں تو اللہ کو یہ منظر اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ کل صبح آنے والی بارش کو آج شام ہی ان پر برسا دیتا ہے. وہ کل کی نعمتوں کو آج ہی اپنے بندوں پر انڈیل دیتا ہے. اتحاد کسی گروہ کی سب سے بڑی طاقت ہے. اتحاد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اتحاد دنیا کی عزت بھی ہے اور اتحاد آخرت کی عزت بھی. اب جس کا دل چاہے پالے، جس کا دل چاہے نہ پائے. کتنی خوبصورت باتیں ہیں نا محاسبے کے لیے. اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں تو کیا واقعی ان باتوں کو سننے کے بعد دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے آج کے بعد کبھی کسی سے دین اور دنیا کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا، میں نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اپنا محاسبہ کرتے ہیں، چیک لسٹ اس ٹاپک کی بھی چھوٹی سی بنائیں گے. کیا میں اللہ کی اطاعت کرتی ہوں اور اس کے رسول کی بھی؟ کیا میں آپس میں جھگڑے تو نہیں کرتی؟ क्या मैं अल्लाह के लिए सब्र करती हूँ? क्या जब मुझे दूसरों से शिकायतें पैदा हों तो मैं दरगुजर करती हूँ? क्या मुझे दूसरों की तनकीद पर गुस्सा आता है? क्या किसी की तरक्की देखकर मेरे दिल में जलन पैदा होती है? क्या जब मेरे मुफादात पर जद पड़े तो मुझे गुस्सा आता है? मेरा उस वक्त क्या रवैया होता है जब दूसरों से मेरी उम्मीदें पूरी ना हों और मेरे जज्बात को ठेस पहुंचे? क्या मैं नाखुशगवारियों को सहने की कोशिश करती हूँ? क्या आज मस्जिदों में जाने के बावजूद भी मेरी हालत बंदों से कटने वाली तो नहीं? क्या अल्लाह से जुड़ते जुड़ते अल्लाह के बंदों से दूर तो नहीं हो रहे? क्या मुझे इस बात का यकीन है कि मुसलमानों को जब भी इज्तमाई इज्जत मिलेगी तो वो इज्तमाई इबादात पे मिलेगी? क्या मैं अल्लाह से मुलाकात के बाद बंदों से भी मुलाकात के लिए तैयार रहती हूँ? क्या मैं बंदों से मुंह मोड़ कर तो नहीं चल पड़ती? इस तरह के सवाल पूछते जाइए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिल बदल दे, हमारे अंदर इत्तेहाद ले आ और अपनी रहमतों को ला। ए अल्लाह, कल की होती हुई बारिश आज बरसा, कल के खिलने वाले फूल आज खिला दे, आज मुसलमानों पे अपनी रहमत कर दे। ये तेरा नाम लेने वाले हैं या अल्लाह, तू इनको इनकी गलतियों पे गौर करने की और इसलाह की तौफीक अता फरमा। अगला टॉपिक है इख्तलाफ से बचो। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 102 से 106 में अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं, ए मुसलमानों, अल्लाह से डरो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका ना करो। आपस में इख्तलाफ करना आग के किनारे खड़ा होना है। अल्लाह के नज़दीक वही लोग कामयाब हैं जो खसूसी इख्तमाम के साथ हर हाल में अपने अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक की फिज़ा को बरकरार रखते हैं। इससे पहले खुदाबंदी इल्म की अमानत यहूद को दी गई थी, मगर वो तफरीक और इख्तलाफ में पड़ गए और इसके नतीजे में अपने आप को अजाब अजीम का मुस्तहिक बना लिया। इनके इंजाम से डरो और तुम भी उन्हीं की तरह ना हो जाओ। ये खुलासा है आयत नंबर 102 से 106 का सूरत आले इमरान। तो तफरीक और इख्तलाफ जिससे बचने का कुरान पाक में हुक्म दिया गया, इसके कई नुकसान हैं। इनमें से एक नुकसान जिसको सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने आयत 46 में बताया, तर्जमा आपके सामने रखूंगी, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब हम देखेंगे कि क्या अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या हैं। यानी बिल्कुल किसी दूसरे से कोई बात हो ही नहीं सकती कि जिसको हम कहें कि इख्तलाफ है या नहीं है। तो इत्तेफाक का मतलब ये नहीं है कि इख्तलाफ की कोई सूरत पैदा ना हो। इंसानों के दरमियान इख्तलाफ का पैदा होना बिल्कुल फितरी है, मगर जो लोग अल्लाह से डरते हों वो मामले की वजाहत के बाद या तो अपने इख्तलाफ को ख़त्म कर देते हैं और अगर फिर भी इख्तलाफ बाकी हो तो वो इसको अपने जहन तक महदूद रखते हैं, अमली ज़िंदगी में इसको फैलाकर मुआशरे को ख़राब नहीं करते। क्या पता चला कि इख्तलाफ तो होगा, लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते हैं ना, वो या तो फिर इख्तलाफ को ख़त्म कर देंगे, मामला देखेंगे किसकी बात सही है किसकी गलत है, जो सही है उसका साथ दे देंगे। इसके बावजूद भी अगर इख्तलाफ रहे ना, तो बस जहन तक रखते हैं, ना उसको ज़ुबान पे लाते हैं और ना किसी अमली मुजाहरे से माशरे का अमन बर्बाद करते हैं। इसके बरक्स जिनके दिल अल्लाह के खौफ से खाली हों, वो इसको अपने इज्जत और वक्कार का मसला बना लेते हैं। ख्वा कितने ही दलाइल दिए जाएं, वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो ऐसा नहीं करते कि इख्तलाफ़ राय को इनाद की हद तक जाने से रोकें, यानी इख्तलाफ जब दुश्मनी में या बुग़स में बदल जाए, और इसको बाहमी कदूरत का सबब बनने ना दें। यही दूसरी किस्म का इख्तलाफ है जो कौम को कमज़ोर कर देता है। अब मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जो ताकत दूसरों को मغلوب करने में काम आती, वो ख़ुद अपने भाइयों को नीचा दिखाने में बर्बाद होने लगती है। सच है ना, आज यही तो हो रहा है। दुश्मनों से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं, सारी एनर्जीज़ और सारी कोशिशें जो हैं वो आपस में ही लड़ने में लग रही हैं। इस बाहमी लड़ाई में अक्सर ऐसा होता है कि मुसलमानों की दौलत मुसलमानों की जेब से निकलकर गैर मुसलमों की जेब में पहुंच जाती है। सच है ना। एक मुसलमान पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो मुसलमान जो इसके मुखालिफ बने हुए हैं, वो इसका साथ देने की बजाय इसकी मुसीबत पर और खुश होते हैं, हत्ता कि वो इसके दुश्मनों से मिल जाते हैं, ख्वा ये दुश्मन गैर मुस्लिम क्यों ना हो। ना इत्तफाकी के बिना पर पैदा होने वाली ये चीज़ मुसलमानों की मजमूई ताकत को इससे बहुत कम कर देती है जितना कि वो हकीकतन है। सच है ना। तो क्या पता चला हमें इसमें कि जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो उसके नतीजे में फिर दुश्मनों से नहीं लड़ पाते, कमज़ोर हो जाते हैं, और सारी तवानाइयाँ आपस में लड़ने में लग गईं। सारे रिसोर्सेज तो आपस में लड़ लड़ के ख़त्म कर दिए, बल्कि गैर मुस्लिम तो फ़ायदा उठाएंगे, वो तो दोनों तरफ से फ़ायदा लेंगे, इनको भी अपने हथियार बेचेंगे, उनको भी बेचेंगे, और कोई ना कोई इशू खड़ा रहेगा ताकि लड़ते रहें। आपको मालूम है कि आज मुसलमानों में जो ये फ़िक़ही इख्तलाफ है, बज़ाहर ये सरासर एक दीनी मसला है ना, लेकिन इसके पीछे भी वजूहात जो है ना, वो गैरों की फैलाई हुई साजिशें हैं। सिर्फ मुसलमान नादानी की वजह से उन बातों में आ जाता है। अल्लाह के नबी के ज़िंदगी में ऐसा हुआ था एक मौके पे, आगे पढ़ेंगे हम जाके। शमास बिन कैस एक यहूदी था, और उसने अच्छी भली महफिल में मुसलमान जो आपस में खुश हुर्रम थे, खा पी रहे थे, उनको लड़ा दिया। तो जब मुसलमान दूसरों की बातों में आ जाते हैं ना, तो फिर वो सुन के भी नहीं सुन रहे होते, वो मानने वाले नहीं बनते। नतीजा क्या होता है कि फिर वो इख्तलाफात में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपना मुहासबा करने वाला बना दे। इस टॉपिक से भी एक छोटी सी चेकलिस्ट हम बनाएंगे, और ये असल में शऊर को बेदार करने वाले चंद सवाल होते हैं, ताकि सिर्फ इन्हीं को हम नोट कर सकें और अपने आप को चेक कर सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या मैं अल्लाह से डरती हूँ? क्या मैं दीन इस्लाम से जुड़कर रहने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं इख्तलाफात को आग का एक घड़ा महसूस घड़ा तसव्वुर करती हूँ? क्या मैं इख्तलाफ को जहन में ही दबा देती हूँ? क्या इख्तलाफी बातों को ज़ुबान पर लाकर मैं ज़ुबान को गंदा तो नहीं करती, और दूसरों को सुनाकर इर्द गिर्द का माहौल ख़राब तो नहीं करती? क्या मैं माशरे में ताफ़ुन तो नहीं फैला रही? क्या मेरा दिल अल्लाह के खौफ से खाली तो नहीं हो चुका? क्या मैं अपनी इज्जत और वक़ार के मसले में दीन को दाव पे तो नहीं लगा देती? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी इस्लाह करने वाला बना दे। अगला टॉपिक है कौले इस्लाम का मेयार इत्तेहादे इस्लाम है। यानी कोई इस्लाम का कॉल पड़ता है ना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये कॉल है ना, तो इस्लाम का कॉल, इसका क्राइटेरियन और इसका मेयार क्या है? इस्लाम का इत्तेहाद। सूरत सफ़ की बहुत ही खूबसूरत आयत है, बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, क्यों कहते हो वो बातें जो करते नहीं हो? कबुर मक्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। बड़ी बेजारी है अल्लाह के हाँ कि कहो वो चीज़ जो ना करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीन युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनयानुम मरसूस। अल्लाह ताला चाहता है उनको जो लड़ते हैं इसकी राह में सफ़े बांध कर, जैसे वो सीसा फैलाई हुई दीवार है। इस आयत को अगर हम देखें तो इस आयत के मुताबिक कौले इस्लाम की सदाकत की जांच इत्तहादे इस्लाम है, क्योंकि यहाँ लिमा तकूलून की बात है ना। इस्लाम के कायलीन अगर इस्लामी मुहिम के लिए मुत्तहिद ना हो सकें तो इनका कौल अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा है, मक्तुन कबीर है, जिसकी कोई कीमत ना दुनिया में है और ना आखरत में है। यह उसूल नहायत अहम नुक्ते पर मबनी है। कोई बड़ा काम इत्तेहाद के बग़ैर नहीं हो सकता, मगर इत्तेहाद एक बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है और ये आदमी की अना की कुर्बानी है। जब ज़्यादा इंसान एक महाज पर जमा होंगे तो लाजमी है कि इन में राय का इख्तलाफ़ हो, एक को दूसरे से तकलीफ़ पहुँचे, बार बार नफ्स को ठेस लगे। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, हर आदमी अपने अंदर ये सोया हुआ जज्बा रखता है कि मेरी चले, दूसरे की ना चले, यानी अपनी चलाने का दिल चाहता है। ऐसी हालत में जब भी कुछ लोग जमा होंगे तो लाजमन आपस में टकराव होगा, कहीं खिलाफ मिजाज बात को बर्दाश्त करना होगा, कहीं तनकीद सुननी पड़ेगी, कहीं अपनी शिकस्त पर सब्र करना होगा, कहीं अपनी बेइज्जती को सहना पड़ेगा, कहीं अपने मुकाबले में दूसरे को तरजीह देनी होगी, कहीं इज्तमाई मसलहत की खातिर अपनी ज़ाती राय को कुर्बान करना होगा, कहीं एक जायज़ क्रेडिट से महरूमी पर अपने को राज़ी करना पड़ेगा। गरज बेशुमार किस्म की नाखुशगवारियाँ सामने आएंगी। ऐसी हालत में इत्तेहाद अमल पर वही कायम रह सकता है जो अपनी अना को ख़त्म करके मुसलमान बना हो, जो अपनी ज़ात को दफन करके इज्तमाईयत में शामिल हुआ हो। इसके बरक्स जो शख्स अल्लाह की किबरियाई पर ईमान लाने के बावजूद अपनी अना को अपने साथ लिए हुए हो, वो कभी मुत्तहिदा जिद्दोजहद पर ठहर नहीं सकता। हम सब अपना जायज़ा ले सकते हैं। अल्लाह पर ईमान अपनी हकीकत के एतबार से अपनी ज़ात की नफ़ी का नाम है। ये जुमला लिखिएगा, अल्लाह पर ईमान अपनी हकीकत के एतबार से अपनी ज़ात की नफ़ी का नाम है। यानी अल्लाह को जब बड़ा मान लिया तो ख़ुद तो छोटे होंगे ना। आप अल्लाह अकबर कहते हैं ना तो असल में साथ ये भी कह रहे होते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। और इत्तेहाद में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मुत्तहिदा जिद्दोजहद सबसे बड़ी और यकीनी कसौटी है, यानी क्राइटेरियन, जिस पर जांच कर ये देखा जा सकता है कि इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी करके इस्लाम में दाखिल हुआ है या अपनी अना के बुत को अपने साथ लिए हुए हैं। जो लोग अपनी अना के बुत को तोड़ चुके हों, इनके लिए कोई चीज़ इत्तेहादे अमल में माने नहीं होती। इसीलिए इस्लाम के महाज पर जब ऐसे लोग काबिले लिहाज तादाद में जमा हो जाएं, तो लाजमन वो कामयाब होकर रहते हैं। आखरत की जन्नत भी इनके लिए लिख दी जाती है और दुनिया का गलबा भी। इसी सूरत सब की आयत 13 में ये बात आती है। मगर जो लोग अपनी अना के बुत को लिए हुए हों, वो कभी मुत्तहिदा ताकत नहीं बनते, और इस तरह वो साबित करते हैं कि इनका कौल हकीकतन कौल बिला फेल था, यानी सिर्फ बात थी, अमल नहीं किया। ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में बिल्कुल बेकीमत हैं, ख्वाह अपनी खुशफहमियों की दुनिया में वो कितना ही ज़्यादा बड़े नज़र आते हों। ईमान बा अमल की कसौटी जो अल्लाह ने मुकरर की, वो इस्लाम के लिए मुत्तहिदा अमल है। कोई दूसरी कसौटी ख्वाह बज़ाहर कितनी ही बड़ी दिखाई दे, अल्लाह के नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं। अब देखिए कि कई दफ़ा हम दीन का नाम लेकर जमा होते हैं ना, लेकिन असल में अंदर अपनी ज़ात आ जाती है। और बाज़ लोग अपनी ज़ात को बचाते बचाते दीन को नुकसान दे देते हैं, और बाज़ लोग अपनी ज़ात के ऊपर चोट पड़ती देखकर दीन को नुकसान दे के चले जाते हैं। अब हमारी ज़िंदगी जो है ना वो अपनी नहीं है। आप देखिए कि कभी आपने एक मारूफ जुमला सुना होगा जो हमारे कल्चर में रुख्सती के वक्त बेटियों के लिए बोलते हैं कि देखो अब तुम्हारी इज्जत इस घर से है, देखो अब यहाँ जो भी हो बस तुमने वहाँ गुजारा करना है। और अक्लमंद बच्चियाँ इस बात को समझ जाती हैं कि अगर शौहर की या ससुराल की कोई बुराई अगर मायके में भी की तो इज्जत तो अपनी ही कम होगी ना, क्योंकि वो शौहर अब आपका है और वो ससुराल आपके हैं। बिल्कुल यही जुमला अगर हम मुसलमान होते हुए बोल लें शऊर के साथ, जिस दिन हम इस्लाम के कमरे में दाखिल हों साथ ही कह दें कि अब इस्लाम की इज्जत मेरी इज्जत है, अगर मैंने इस्लाम को बेइज्जत करके खुद को बाइज्जत करना चाहा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। और आप देखेंगे कि जब हम इस तरीके से बात समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह कम से कम हमारे किसी जुमले और हमारी किसी बात से इस्लाम को ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर इस टॉपिक में से भी हम अपने लिए चंद बातें एक चेक लिस्ट के तौर पे नोट कर सकें तो पहली बात, क्या मैं ईमान लाने के साथ साथ अपनी अना को दफन कर चुकी हूँ? क्या मैं इत्तेहाद के लिए अपनी अना की कुर्बानी दे सकती हूँ? क्या मैं अपनी राय से मुख्तलिफ बात सुनकर गुस्से में तो नहीं आ जाती? क्या मैं ये तो नहीं चाहती कि मेरी चले और दूसरे की ना चले? क्या मैं खिलाफे मिजाज बातों को बर्दाश्त करती हूँ? क्या तनकीद सुनकर ठंडे दिल से गौर करती हूँ कि शायद कहने वाले ने बात ठीक कही हो? क्या मैं अपनी शिकस्त पर सब्र करती हूँ? क्या मैं अपने मुकाबले पे दूसरों को तरजीह देती हूँ? क्या इज्तमाई मसलहत की खातिर अपनी ज़ाती राय को कुर्बान करती हूँ? क्या एक जायज़ क्रेडिट से महरूमी पर अपने आप को राज़ी कर लेती हूँ? अगर सबका जवाब हाँ है ना तो मुबारक हो, आप वाकई फिर इत्तेहाद की राहों पे गामजन हैं और आप इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि अपने इर्द गिर्द लोगों को दीन के नाम पे जोड़ लेंगे। और इसके बरक्स अगर फिर अल्लाह की किबरियाई पर ईमान लाने के बावजूद अपनी अना को अपने साथ लिए हुए हैं तो फिर कभी भी मुत्तहिदा जिद्दोजहद नहीं हो सकती, फिर टीम वर्क नहीं हो सकता, फिर इज्तमाई काम नहीं हो सकते। आज मुसलमान इनफरादी नेकियां करना बहुत पसंद करते हैं, नाम भी है, आज़ादी भी है, कोई रोक नहीं टोक नहीं, अंदर ख्याल भी छुपा हुआ है कि मैं दूसरे से अच्छा कर सकती हूँ, तो छोटी छोटी टोलियाँ तो बन जाती हैं लेकिन उससे एक बड़ा गिरोह नहीं बनता। इसलिए ज़रूरत है कि इंसान अपनी खूबी को सामने रखे लेकिन दूसरों की खूबियों को साथ लेकर चले, और जिस तरह अपनी बहुत सारी खामियों को बर्दाश्त किए हुए इस तरह दूसरों की खामियों को भी बर्दाश्त करके इसलाह की कोशिश करें। तोड़ना तो बहुत आसान है, असल मुश्किल तो जोड़ने में है, और ख़ास तौर पे जब सामने बहुत रोशन मुस्तकबिल भी दिखता हो तो बस लोग हक की बजाय सिर्फ कामयाबियों के पूछने वाले बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उस कसौटी पे पूरा उतरने वाला बना दे जो अल्लाह ने कामयाब होने वालों के लिए कायम की है। दुनिया में भी अगर हम दीन के नाम पे मारूफ हो जाते हैं तो फिर आखरत में भी हमारा दीन ही हमारी पहचान हो, इसके अलावा कोई और पहचान ना हो, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।